ओम शांति। हम परम सौभाग्यशाली हैं कि हमारी भट्टी की शुरुआत बहुत अच्छी हो रही है। परम आदरणीय, परम श्रद्धेया बाबा आदरणीय दीदी जी को ज्ञान की बुलबुल कहा करते थे। बाबा के संबोधन आपके लिए होते थे कि रूही गुलाब, भारती बच्ची। बाबा के संबोधन आपके लिए हुआ करते थे वारिस बच्चे निकालने वाली बच्ची। हम सब बाबा को याद करते हैं, लेकिन हमारे इस पूरे यज्ञ में कुछ ही चंद आत्माएं हैं जिनको बाबा याद करते हैं, और उनमें से आप हमारे बीच आदरणीय सुदेश दीदी जी हैं। आप वर्तमान समय हमारे ब्रह्मा कुमारी के जॉइंट चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज हैं। यूरोपियन कंट्रीज में जो ब्रह्मा कुमारीज की सेवाएं हो रही हैं, आप उसके डायरेक्टर हैं, और विशेष जर्मनी में जो रिट्रीट सेंटर है, आप उसके डायरेक्टर तो है ही। और बाबा ने उसके साथ साथ आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जवाबदारी दी है, ज्ञान सरोवर के भी आप सीनियर डायरेक्टर के रूप से वर्तमान समय अपनी सेवाएं दे रहे हैं। साकार बाबा मम्मा की पालना में पले, 1957 में ही आपको दिल्ली रजौरी गार्डन से बाबा का ज्ञान प्राप्त हुआ, और वर्तमान समय देश विदेश में सैकड़ों देशों में भ्रमण करते हुए डबल लाइट बनकर आप सभी का उमंग उत्साह बढ़ाते रहते हैं। मैं आपके लिए दो शब्द कहूंगी, वाणी में तेज और चेहरे, वाणी में ओज और चेहरे पर तेज, सारे विश्व में फैलाते आप बाबा की रेज। बाबा की किरणें सारे विश्व में आप फैलाते रहते हैं। तो आदरणीय दीदी जी हमें भट्टी का लक्ष्य बताएंगे और डबल लाइट स्थिति पर भी क्लास कराएंगे। आदरणीय दीदी,
ओम शांति, ओम शांति, ओम प्रेम, ओम प्रेम, ओम आनंद, ओम आनंद। सबसे पहले तो आप सबको, ये रायपुर वालों की भट्टी है, राय बाबा की राय मानने वाले, बाबा की श्रीमत पर चलने वाले, अपने जीवन को राजयोगी रॉयल बनाने वाले संगम युग के राजा राय, पहले राजा को था थाईलैंड के तरफ राजा को राय ही बोलते हैं, इस तरफ तो राजाएं, वेलकम आपका मधुबन तपस्वी भूमि पर। बाबा की जहां हर संकल्प से, श्वास से, वाणी से, पालना से, हर कर्म से पवित्रता की किरणें निकलती थी, प्यार की गंगा बहती थी, सागर उछलता था और अब भी उछलता है, और सत्यता सत्य के सच्चिदानंद के साथ संबंध जुड़ता था, तो जैसे आते ही खुशी की लहर फैल जाती है, आनंद ही आनंद है। इसलिए आत्मिक स्थिति में स्थित होना, ओम शांति, बाबा के साथ संबंध जोड़ना, सर्व संबंध का रस लेना, ओम प्रेम, और वो जो परमात्मा की राय श्रीमत मिलती है उससे जीवन परिवर्तन हो करके ब्राह्मण से राजयोगी, राजयोगी से राजऋषि, और राज से स्वराज अधिकारी, और स्वराज अधिकारी से विश्वराज अधिकारी। इसीलिए आप ऐसी विशेष आत्मा को भाग्य है, मधुबन में आपको चांस मिला है भट्टी करने का। तो ये सुंदर समय, और करो तपस्या, पहले साथ में ये भी है, तपस्या करने आए हैं, भट्टी करने आए हैं। तो भट्टी का लक्ष्य क्या है, किस लिए भट्टी करने आए, किस लिए तपस्या करने आए? तो लक्ष्य फिर से जो बाबा ने हम बच्चों को लक्ष्य दिया है, नारी लक्ष्मी बने, नर नारायण बने, तो उसके लिए पवित्रता, स्वच्छता, स्वच्छता, शुद्धि, पवित्रता और दिव्यता, और वो आती है योग बल से, लगन की अगन को तेज करने से। भट्टी क्यों कहते हैं, यानी संगठन में इंडिविजुअल लगन तो है, इंडिविजुअल बाबा से प्रेम भी है, हर एक का व्यक्तिगत बाबा के साथ संबंध जुट के सुख का अनुभव करने का भी अनुभव है, परंतु ये संगठन का बल विशेष होता है। भट्टी में एक ईंट नहीं पकती, भट्टी का मतलब ही है सब कट्ठे के कट्ठे सारे एक ही समय पर। तो बाबा ने ये पहले धोबी की भट्टी खोली है स्वच्छ बनाने की। बाबा कहते हैं मैं बच्चों को, मैं पतित पावन हूं, मैं पावन बनाने के लिए आया हूं। तो पावन तो रिजल्ट है, पहले बाबा को लक्ष्य पक्का कराने के लिए स्वच्छ बनाते हैं, आत्मा को स्वच्छ बनाते हैं, इसलिए लक्ष्य बहुत ऊंचा दिया है। तो पहले आज भी है, मैं समझती हूँ पहले भी मैंने जो पहली भट्टियां हैं उनको भी ये बात शेयर की थी कि तीन तरीके से बाबा हमेशा ध्यान खिंचवाते थे आत्मा को, कितना चमकदार स्वच्छ पावरफुल बनना है। तो तीन तरह का सोप है, स्वच्छ बनना है सोप चाहिए, तो आत्मा को स्वच्छ बनने के लिए लक्ष्य का सोप मिलता है, और बाहर भी लक्ष्य सोप मिलता है, लक्ष्य लक्ष्य सोप होता है ना। तो ये भी सॉफ्ट भी होता है, स्वच्छ भी अच्छा करता है, बॉडी को स्वच्छ करता है। ये लक्ष्य हमारा मन को स्वच्छ करता है, तन को भी श्रेष्ठ कर्म करवाता है, और संकल्प और बुद्धि को भी दिव्य बनाता है। मन, बुद्धि और संस्कार तीनों ही स्वच्छ बन जाते हैं, परंतु इसलिए धोबी की भट्टी है, उसमें सोप चाहिए ना, तो लक्ष्य सोप है, लक्ष्य ऊंचा है बहुत। तो कपड़ा साफ हो, बरसात पड़ रही हो, आपने अंदर सुखा दिया, सीलन में कपड़ा जो गिरे बरसात के कारण, धूप नहीं मिली तो कपड़े में चमक आएगी, धुलाई होने के बाद भी पीला रहेगा। तो इसलिए दूसरा सोप है सनलाइट, ज्ञान सूर्य परमात्मा स्वयं प्रकट होकर के प्रकाश देता है, सकाश देते हैं, शक्ति भरते हैं, शुद्ध करते हैं। तो सनलाइट, इसमें पूरा सारा ही आत्मा को अपने आदि मध्य और अंत में का कॉन्ट्रास्ट पता चलता है। कपड़ा धुलाई करना है तो विधि होती है ना, कपड़ा पहनोगे तो मशीन में नहीं डालेंगे ना, कपड़ा पहने हुए तो भट्टी में नहीं चढ़ाएंगे ना, कपड़ा पहने हुए मशीन में उतारना पड़ेगा ना। अब पहना हुआ होता है तो पहले तो इतना ध्यान नहीं जाता है कि मैला है, पहना होता है ना तो चल जाएगा, ठीक ही लग रहा है, चलेगा ये है। तो हम कल शाम को ही तो पहनी है, अगर अभी भी पहन ली तो कोई बात नहीं, तो नीचे की जो किनारे होती है ना उतारो तो पता चलता है कि ये तो चमक रही है यार से, पर किनारे पैरों से थोड़ी थोड़ी धूल फिर भी आ गई है। तो ऐसे हमारे व्यवहार में चलते चलते कदम आगे बढ़ाते थोड़ी सी मिट्टी थोड़ी थोड़ी चिपक गई, तो इसीलिए उतारे तो फिर भट्टी में डाले, यानी सोल कॉन्शियस बने, कपड़े से न्यारे होकर के, देह के भान से न्यारे होकर के, फिर योग की भट्टी का मतलब ही है मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। वो शरीर छोड़ना है, ये देह के भान से न्यारा होना है शुद्ध करने के लिए। तो इसीलिए ज्ञान सूर्य हमको लक्ष्य देते हैं, सिर्फ शुद्ध नहीं बनना, स्वच्छ नहीं बनना है, शुद्ध भी बनना है, स्वच्छ बनना है, शुद्ध बनना है, क्योंकि मिलावट हो जाती है। चलते चलते देह भान आत्माभिमान मिक्स हो जाता है, थोड़ी थोड़ी किसी बात में ईश्वरीय मर्यादाओं में खान पान में, चलो कोई बात नहीं, जल्दी है ना, बहुत जाना है, बाबा की याद में मैंने बनाया है, भोग नहीं लगाया, बैठ के भोग लगा के खा लूंगा, थोड़ी सी लापरवाही आ जाती है, या कोई चीज कोई बात नहीं, मशीन की बनी हुई है, किसी मनुष्य का हाथ नहीं लगा हुआ है। तो नियम मर्यादाओं में जो हमारे पास कितना शुद्ध स्वच्छ हमके संकल्पों में जो मिक्सचर हो जाते हैं, संकल्प और समझ में शुद्ध रहे, वो कॉन्ट्रास्ट इसीलिए है। अगर असली घी है तो सिर्फ घी बोलेंगे, भाई घी, परंतु अगर मिक्स हो गया है, डालडा आ गया है, तो फिर एम्फसाइज करेंगे सच्चा घी, देसी घी। घी है तो घी है, जब घी है तो देसी घी कहते थे क्या भाई, घी का घी में सब्जी बनाई है, घी में लड्डू बनाए हैं, अभी देसी घी में बनाए हैं, डालडा मिक्स हो जाता है। तो इसी प्रकार से कुछ हमने डाल दिया उसमें, डालडा क्या है, हमने अपने मन के विचार उसमें डाल दिए और उसको ठीक समझ के हम करने लग पड़ते हैं। कोई बात नहीं, मैं उठ तो गई हूं, मैं लेटे लेटे योग लगा लेती हूं, पापा को याद ही तो करना है, प्यार से ही तो याद करना है, अब जिसके साथ मेरा प्यार है बैठे हैं तो भी तो योग लगाया हुआ है, लेटी हूं तो भी तो योग लगाया है, थोड़ी सर्दी ज्यादा है, कोई बात नहीं, ब्लैंकेट के अंदर बैठी बैठी बिस्तरे पर योग लगा लूं, कुछ डाल दिया ना उसमें मिक्सचर हो गया। तो आत्मा को अटेंशन देना है कि छोटी छोटी बातें जो मिक्स हो जाती हैं उसको भी अंदर से स्वच्छ करना है। बाबा हमको दृष्टि देता है, गहराई से अपने आप की चेकिंग करो कि संपूर्ण स्वच्छता आई है। और जितनी जितनी आत्मा में स्वच्छता बढ़ती चली जाएगी, ऑटोमेटिकली तीसरा सोप कौन सा है? अब धोबी की भट्टी में बाबा ने धोबी बन के तीसरा सोप भी यूज किया, लक्ष्य दिया, ज्ञान सूर्य बन करके लाइट दी तो चमक आ गई, धूप में कपड़ा सुखाया ना चमक आ गई, कपड़े कमरे के अंदर चमक आए, अंधेरे में सुखाया चमक नहीं आई। इसलिए सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान देके बताते हैं कि कैसे तुमको संपूर्ण कर्मातीत बनना है, सर्वगुण संपन्न बनना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, दिव्य मुहूर्त बनना है। संगम पर ही मन के अंदर दिव्य मन को मंदिर बना के दिल के अंदर मन के अंदर दिव्य गुण की मूर्तियों को बिठा देना है ताकि रोज स्मृति रहे में ज्ञान मुहूर्त, गुण मुहूर्त, शांत मुहूर्त ये, और साथ साथ अपने स्वरूप, पांच स्वरूप जो बाबा ने बताए, पांचों स्वरूपों का अभ्यास अथवा ड्रिल करते रहे। लक्ष्य तो वो ये मशीन जो अंदर जैसे कपड़े धोने की मशीन है, पहले जब यहाँ बाबा के समय भट्टी थी, यहाँ पर किचन में जाते हैं ना तो लेफ्ट हैंड साइड पर भट्टी थी, भट्टी का मतलब आग जलती थी, लकड़ियाँ बड़े चूल्हे पर कनस्तर भर के पानी का साबुन डालते थे और कपड़े डाल के उसमें जब थोड़ी देर रख के कुछ उसकी मैल खुल जाए, फिर बाबा खुद भाइयों के साथ कपड़े सट देते, स्वच्छ करते थे। तो साबुन तो जरूर चाहिए ना, खाली पानी से तो नहीं। तो बाबा क्वालिटी साबुन यूज करते हैं, ऊंचा साबुन, लक्ष्य बहुत ऊंचा। फिर जो चमक लाने के लिए योग की शक्ति, तपस्या का बल अथवा सनलाइट साबुन, अंधेरे में कोई चीज देखो तो मैला भी मैला नहीं लगेगा। इसलिए जब ज्ञान की लाइट जग जाती है तो अपनी छोटी छोटी कमजोरियां भी दिखाई पड़ने लग जाती है। तो सनलाइट देते हैं, सनलाइट का सोप। तीसरा सोप कौन सा है? धोबी की भट्टी में, भट्टी में आई हो ना, तो तीसरी भट्टी कौन सी है? तीसरा सोप कौन सा है? तीसरा सोप है लाइफ बॉय। अरे बच्चे लाइफ बना ले, है ना लाइफ बॉय आजकल भी मिलता है ना? तो अपनी लाइफ बनानी है, लाइफ को परिवर्तन करना है। सारा जीवन ही यही नहीं परंतु 2500 साल के लिए तो लाइफ ऐसी चमकती रहेगी, दिव्य रहेगी, जो तन भी स्वच्छ रहेगा, मन भी स्वच्छ रहेगा, धन से भी संपन्न रहेंगे, काया भी निरोगी रहेगी, संबंध में भी स्नेह रहेगा, स्वभाव में भी एक दो में एकता होगी। तो उसका अनुभव, उसके संस्कार बनाने के लिए जीवन बनाना है तो तीसरा सोप है लाइफ बॉय। अब जब क्यों ये चाहिए बाबा को तीनों सोप, जीवन बनाने का सोप चाहिए जरूर, स्वच्छ भी जरूर चाहिए, चमकता हुआ भी जरूर चाहिए। बाबा ने कहा तुम्हारा चेहरा चमकता रहे, इतने अंदर आनंद और खुशी रहे, चेहरा दिल का दर्पण है, अंदर आनंद की लहर इतनी आवे जो तुम्हारी दृष्टि से दूसरों को दर्शन होवे, तुम्हारे चेहरे पर कभी मुरझाट नहीं आवे। तो कपड़े को प्रेस करते हैं ना, अगर मुरझाट आ गई इसका मतलब है कि कपड़ा साफ तो हुआ है पर थोड़ी थोड़ी उसको प्रेस करने की जरूरत है। तो अपने पर अटेंशन देने की, अपने आप पर अपने लिए जैसे प्रेस, ऊपर ऊपर से तो नहीं ना प्रेस दबा के चलते। हमारे पास अब भी जो प्रेस बाहर थी पाकिस्तान में, वो यहाँ आई थी तो शुरू शुरू में वो लोहे की प्रेस थी और इतनी भारी थी जो कपड़े को बिल्कुल अच्छी तरह से साथ में निकाल देती थी, यानी दृढ़ता की शक्ति, इतना पावरफुल जो संकल्प किया, जो लक्ष्य रखा, जो धारणा करनी है तो उसमें थोड़ी लापरवाही ना रहे तो चमक भी आ जावे और स्वच्छता के साथ साथ दिव्यता भी आ जावे। प्रेस किया हुआ कपड़ा फिर थोड़ा चमक और भी ज्यादा शानदार लगता है, रॉयल लगता है। धोया हुआ हो, सूखा हुआ हो और प्रेस करके पहनो, फ्रेश लगता है। सदा जीवन में तो अब मर्यादाओं में पक्के रहना माना फ्रेश रहना। भूल होएगी कहा मतलब धूल चढ़ गई है, भूल की धूल चढ़ गई है या किसी चीज का प्रभाव पड़ गया है तो थोड़ा चेहरा, चेहरे पर थोड़ी थोड़ी रेखा है चिंता की, परचिंतन की, परेशानी की, रूप स्वरूप बदल जाएगा ना। तो तन भी स्वच्छ बे, क्यों बाबा स्वच्छ करना चाहते हैं, क्योंकि अगर कपड़ा साफ नहीं है तो योग का मतलब क्या है, बाबा के साथ संबंध अथवा संग, सत्य का संग, सच्चिदानंद का आनंद लेना है तो संबंध और संग। तो बाबा ने फिर रंगरेज की भट्टी खोली, धोबी की भट्टी, फिर रंगरेज की भट्टी। रंगरेज समझते हो ना क्या होता है, कपड़े को रंग देना। तो बाबा मधुबन के संग में आपको भेज के, मधुबन के वातावरण में भेज के, रूहानी रंग में रंगने के लिए। अगर साफ हो गया, नहीं साफ हुआ तो जो धब्बे हैं, रंग तो जाएगा पर धब्बे रह जाएंगे, वो दिखाई पड़ेंगे। इसीलिए इतना स्वच्छ होवे जो कोई दाग जो पुराने रहे हुए हैं वो मिट जावे। इसलिए पावरफुल ईश्वरीय संग के रंग में, संगठन के बल से अपने आप को स्वच्छ बनाना है। तीसरा फिर यह है ईंटों की भट्टी, कुम्हार की भी भट्टी। तो अपने जीवन को शेप करने का, ये मिट्टी कुम्हार के पास मिट्टी है, मिट्टी में तो पानी नहीं पिएंगे, ठंडा नहीं होगा, मटका बना दिया उसमें जल डालेंगे ठंडा लगेगा ना। तो वो जो देह भान में हमारी मिट्टी के कॉन्शियस में हम थे, बाबा उसको शेप करते हैं मटके में अथवा कलश में। तो अब वो उसके लिए प्यार भी करता है, मटका बनाने वाला या मशीन भी अंदर से सपोर्ट होती है, ऊपर से थप थप होता है, यानी कोई चीज को सीधा करना होगा, शेप देनी होगी, ऊपर तो थप्पड़ भी मारेगा पर अंदर से मुट्ठी भी अंदर है, तो बाबा अंदर से सपोर्ट भी देता है, बाहर से सारी मर्यादाओं को पक्का भी कराते हैं, बार बार याद कराते रहते हैं। फिर जो है हमको, हम यज्ञ के रक्षक हैं। बाबा कहते हैं ये पांडवों का किला है, पांडव भवन पांडवों का किला है, और किले की आप सभी ईंटे हो, तो अगर एक ईंट भी कच्ची रह गई ईंटों को पकाने के लिए, अग्नि चाहिए पावरफुल। तो बाबा कहते हैं कि तुम मेरे बच्चे यज्ञ के रक्षक हो, तुम सब एक एक बच्चे का महत्व इक्वल है, छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर एक ईंट भी ढीली है तो सारी बिल्डिंग को खतरा है, इसलिए हर एक को अपने आप को पक्का करना है योग बल के आधार से, और उसी अग्नि से दूसरों को भी शक्ति मिलती है, संगठन का बल होता है। तो भट्टी का मतलब ये है, संगठन में आके अपनी शक्ति अपनी कंपनी से दूसरे को भी दिव्य कंपनी देवें, और अगर थोड़े कमजोर भी हैं तो दूसरों से सीख लेवें। आग जल रही है, लकड़ियां बिल्कुल पक्की हैं, सूखी हुई है, अब 50 लकड़ियां जल रही है भट्टी में, मिसाल के तौर पर 2 लकड़ियां गीली डाल दो, क्या मतलब हुआ? वो 2 लकड़ियां गीली भी सूख जाएंगी जल्दी, वो 2 लकड़ियां भी ऐसे ही जलने लगेंगी, इतनी जल्दी उनको शक्ति मिलेगी, वो भी आग पकड़ लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे कोई नवे भी आए है ना, थोड़ा समय भी हुआ है, वो जो बाकी पक्की मजबूत लकड़ियां, मोटी लकड़ियां, सूखी लकड़ियां, पुरानी लकड़ियां, समझ गए ना भाव, एग्जाम्पल, तो उसमें अगर कोई कच्चा है तो भी पक्का हो जाएगा, संगठन का बल इतना है, वो भी पक जाएंगी, वो भी ऐसी उनको कैच कर लेंगे, अपने अंदर शक्ति भर लेंगे, तपस्या का उमंग उत्साह उनको भी बढ़ेगा, संघ का रंग लगा तो धोबी की भट्टी, फिर रंगरेज की भट्टी, फिर ईंटों की भट्टी, कुम्हार की भट्टी, लोहार की भट्टी नहीं, बाबा कहता है लोहार तो मार के निकालता है ना, मैं कहते मैं तो प्यार करके निकालता हूँ, तुम बच्चों को कर्मों के हिसाब किताब को चुप्पू करना है, तुम्हारा लोहा निकालना है, रस्ट अंदर लगा हुआ है, तो मैं प्यार से मर्यादाएं सिखाता हूँ, तुमको अपनी चेकिंग अपने आप करनी है, पारसनाथ बनना है, लोहे को सोना बनाना है, और फिर फाइनल भट्टी खोट निकल जावे, आयरन एज से गोल्डन एज में चले जावे, तो भट्टी है सुनार की भट्टी। बाबा हम बच्चों को सच्चा सोना बना के अपने गले का हार बना देता है, श्रृंगार बना देता है, ताकि भक्ति मार्ग में मूर्तियों को भी श्रृंगार, सोने के श्रृंगार से सजाते हैं। आज अपने क्लास में बताया कि बाबा का विश्वास हर एक पर था, छोटे हो चाहे बड़े हो। तो एक बात सुनाई, बाबा ने एक सेठ ने मंदिर की ओपनिंग करनी थी, उसने मूर्ति के लिए ताज बनवाया था, तो वहां पे पहुंचाना था उसके पास। तो बाबा ने एक जो दुकान पर काम करता था कुमार, उसको कहा ये साइकिल पर दे के आओ, पैक करके देता हूँ अच्छी तरह से, सुंदर उसके ऊपर रंगीन कलरफुल कागज भी था, तो दिया पैक करके। ताज तो छोटा था, मूर्ति का ताज कोई बहुत बड़ा भी नहीं, पर तो ताज तो सोने का ही था। वो साइकिल पर लेके गया बास्केट में रख के। मतलब बाबा का बच्चों में विश्वास कितना है ये बात बताती। तो क्या हुआ कि वो जो ताज लेके गए जा रहा था, चील आई, माया चील बाबा ने कहा ना, चील बाबा हमको ताज भी पहनाते हैं, अभी भी लाइट का क्राउन देते हैं, गोल्डन क्राउन देते हैं, पवित्रता का क्राउन देते हैं, अपने पांचों स्वरूपों का अभ्यास करना। तो वो कुमार वापस आया, लड़का जो काम करता था 5 मिनट, वो वापस आया, का दादाजी क्राउन जो अपने मूर्ति का दिया था वो छील ले गई, टोकरी में रखा हुआ था, उसने समझा कोई खाने की चीज है। तो दुकान पर, बाबा की दुकान पर, ये मेरे को कहानी सुनाई, मैं बता रही हूं कि बाबा का विश्वास कितना था जीवन से जीवन बनाने का। पारसनाथ लोहे को पारस बनाते हैं, डाउटफुल में भी निश्चय भर देते हैं, आत्मविश्वास बढ़ा देते हैं, भट्टी इसलिए कर रहे हैं, लोहे से सुपारसनाथ बन के लोहे को भी सोना बनावे। तो बाबा ने कहा कि माया चील है, तो ये हम गोल्डन एजेस बन रहे हैं, माया चील है, ताजधारी बन रहे हैं, माया चील है। तो बाबा की कहानी बता रही हूं, ये मेरे को जिस भाई ने खुद देखा और जिसके साथ ये सामने हुआ था, लंदन में आए थे, तो उन्होंने सुनाया था। मैंने कहा तुम बाबा के पास रहे हो तो तुमने कोई बाबा की बात सुनाओ। तो उसने ये जो मैं कहानी सुनाई सुनाया, तो कहा कि हम, मैं दूसरा व्यक्ति जो साथ में था, हम एक दो को इशारे से, मुख से तो नहीं बोला, आंखों से देख के मन का भाव कि लड़का होशियार है, चलाकी की होगी। भैया भी कोई कोई साथ में थोड़ा ही था, बाबा ने तो अकेले ही इसको भेजा ना विश्वास रख के, पता नहीं कहाँ करके आ गया होगा। अब कहता है गुम हो गया, चील ले गई। बाबा को विश्वास था लड़का ऑनेस्ट है, और बाबा ने इन दोनों को इशारा करते देखा एक दो को, और शक किया, ये भी दिखाई पड़ रहा था वाइब्रेशन। बाबा ने कहा कि उस भाई ने कहा, बाबा ने और भी बैठे थे दुकान पर थे, पर बाबा ने हम दोनों को कहा बच्चे इस बच्चे के साथ जाओ, अब चील सोना तो खाएगी नहीं, ताज तो नहीं खाएगी, और सेठ को तो मंदिर की मूर्ति का उद्घाटन कल ही करना है, आज ही उनको सजानी है मूर्ति। प्राण प्रतिष्ठान तो कल है, परंतु देना तो आज होगा ना, वायदा किया है। तुम इसके साथ जाओ, अब ये तो छोटा है, कोई इसको चढ़ने थोड़ी देगा अपने चबारे अपने घट छत पर। चील कहीं उड़ के किसी जगह छत पर ही बैठी होगी ना, तो कहा मेरे से पूछा कि तुमको ये मालूम है कि कहाँ पर चील ने तुम्हारा ताज, ये तुम्हारा साइकिल से वो पैकेट उठा लिया था? कहाँ? फलाने एरिया में। कहा दोनों को भेजा कि जाओ, तो दो आप इधर उधर जाके उनको बताओ कि हमारी कोई चीज चील लेके गई इम्पोर्टेंट, हम छत पर देखना चाहते हैं, आपको विश्वास करेंगे, कोई नहीं रोकेगा। कहा हम गए तो बराबर छत पर वो पैकेट खुला हुआ पड़ा था, चील ने खोला, सोना तो खा नहीं सकती थी, हम वो ताज लेके आए। तो बाबा ने विश्वास रख करके हमारे डाउट को दूर किया और हमारा विश्वास बालक पर बिठाया कि यानी हमारा मन किसी अच्छे को भी मैला दिखाई पड़ता है, मन मैला है तो भगवान तो मैले को भी साफ करता है, इसीलिए धोबी की भट्टी भी है तो सुनार की भट्टी भी है तो कुम्हार की भट्टी भी है। तो बाबा आप ऐसी भट्टी में आए हैं जो गोल्डन स्टेज में जाना है, स्टेज गोल्डन बनानी है, श्रेष्ठ कर्म सिखा के कर्मातीत बनना है और कर्मातीत बनाना है, लक्ष्य तो यही है, संपूर्ण बनना है। तो चलते फिरते उठते बैठते अचानक का पाठ जो बाबा ने पक्का बताया, मम्मा का जो है स्लोगन हुक्मी हुक्म चला रहा है, कब भी समय लास्ट घड़ी है, अभी जो कर लिया फिर चांस नहीं है, तो ये सुंदर चांस मिला है, उसमें शुद्ध स्वच्छ भी बनना है, शुद्ध भी बनना है, भगवान के और ये ब्राह्मण परिवार के मधुबन के वातावरण के संग के रंग में रंग के रंगरेज की भट्टी में रंग के जाना, सर्व इंद्रधनुष बन करके जाना, सूरज भी चढ़ रहा है और ज्ञान की बरसात भी पड़ रही है, तो आप ही इंद्रधनुष बन करके जाएंगे, जो आपको कोई देखे तो कहे अरे ये तो इंद्रधनुष आ गए, सतरंगी भर सारे रंग आप में प्रकट हो जाए, ईश्वरीय रंग में रंगो। तो कहते हैं लाली देखन मैं गई, मैं देख मैं भी हो गई लाल। तो बाबा के घर में मधुबन में आए, मधुबन निवासी बन के जा रहे हैं, ऐश्वर्य संग में आए हैं, रवानी रंग में रंग के जा रहे हैं। तो कोई रहा हुआ दाग भी धुल जावे, तीनों सोप जरूरी रखो, लक्ष सोप, सनलाइट सोप और लाइफ बॉय, लाइफ बना के ही जानी है देवता जैसे, संपूर्ण बन के ही जाना है। ओम शांति। लक्ष्य शुद्ध स्वच्छ भी बने, शुद्ध भी बने, पवित्र बने और पावन बने, पूजनीय बने।
सभी एक हाथ की ताली से आदरणीय दीदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। कितनी सारी भट्टियां, धोबी की भट्टी, रंगरेज की भट्टी, ईंट की भट्टी, कुम्हार की भट्टी, लोहार की भट्टी एंड अल्टीमेट सूक्ष्म कमजोरियों को निकालने के लिए सोनार की भट्टी। स्वच्छ भी बनना, शुद्ध भी बनना, पावन भी बनना और पवित्र भी बनना और पावन भी पूजनीय बनना है, पावन बनकर पूजनीय बनना है। भय जी 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 जी। बाबा ने आदरणीय दीदी जी के द्वारा हम सबको बहुत 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 भरपूर किया। तो मैं अब अनुरोध करूंगी, हमारे बीच मधुरवाणी ग्रुप है, आदरणीय सतीश भाई जी, हल्दर भाई जी और निरंजन भाई जी, तो बहुत सुंदर गीत की प्रस्तुति के द्वारा सभी का स्वागत करेंगे। अभी स्वागत गीत के बाद जो भी टीचर्स बहनें आई हैं भट्टी में, मेरा आपसे अनुरोध रहेगा 5 मिनट के लिए थोड़ा रुक जाइएगा।
ओम शांति। सुदेश दीदी जी की आंखों से दीदी दादियां सब झांक रही हैं, दीदी को देखते हैं तो हमको ये नहीं लगता है कि हमारे बीच में हमारी दादियां नहीं, उनकी पूरी शक्ल। और जब दीदी कहती है ओम शांति, ओम प्रेम, ओम आनंद, तो इतना आनंद आता है कि मन तालियां बजाने लगता है। आप भी ताली बजा के अभिनंदन करिए।
छत्तीसगढ़ रायपुर भरपुर होने को आया मधुवन, बाबा की आशाओं को पूर्ण करने पूना का हुआ शुभागमन। बाबा दादी के प्राण प्यारो साकार स्वप्न बनाइए, रायपुर के संग राय साहबो सादर स्वागत आइए,
जोरदार ताली बजाइए।
स्वागत आइए।
आज आपको यहाँ पर रायपुर के साथ जितने भी भाई बहने आए हैं, ऐसा लगता है कि यह राज दरबार सजा हुआ है। तो आप सबको रायपुर के राय साहेबों कहा है, आप सब राय साहबों के हिसाब से इस संबोधन से अपना प्यार अपना स्नेह स्वीकार करें। एक बार जोरदार ताली बजा दें। भाई जी और कमला दीदी जी ने बड़े प्यार से है सींचा, आज सामने देख रहा हूं वो प्यारा यहाँ खिला बगीचा, वो प्यारा यहाँ बगीचा है। हमारी सब बहनें आई हैं, भाई आए हैं, एक बार जोरदार ताली बजा के सब।
राज पर राजकुमारो राज दरबार सजाइए, छत्तीसगढ़ के राज दुलारो विजय का तिलक लगाइए, बाबा दादी के प्राण प्यारो साकार सपन बनाइए, रायपुर के संग राय साहबो सादर स्वागत आइए, बाबू राज पर राजकुमारो मधुबन बाबा की मीठी मुरली जा बजती, यही वो धरती दादियाँ शिव शक्तियाँ जहाँ सजती, यही वो धरती दादियाँ शिव शक्तियाँ जहाँ सजती, शिव शक्तियाँ जहाँ सजती, राज ऋषियों तपस्वियों ऋषियों तपस्वियों तप से ज्वाला जलाइए, रायपुर के संग राय साहबो सादर स्वागत आइए, आबू राज पर राजकुमारो Thank you.
सुख हो सारे सुख से अंतर को भर लीजिए।
अंतर्मुख हो सारे सुख से अंतर को भर लीजिए।
हीरे जैसा संगम युग पल पल सफर कर लीजिए।
हीरे जैसा संगम युग पल पल सफल कर लीजिए। पल पल सफल कर लीजिए।
चार दिन में 14 वर्ष की हो।
चार दिन में 14 वर्ष की भक्ति यादगार बनाइए। रायपुर के संग राय साहब सादर स्वागत आइए। आबू राज पर
सुदेश दीदी जी की आंखों से दीदी दादियां झांक रही।
सुदेश दीदी जी की आंखों से दीदी दादियां झांक रही।
सती दीदी सील दीदी सब प्यार अलौकिक बांट रही।
शशि दीदी शीलू दीदी सब प्यार अलौकिक बांट रही। सब प्यार अलौकिक बांट रही।
अस्मिता बहन संग आइए।
अस्मिता बहन संग आइए। मधुर वाणी में गाइए। रायपुर के संग राय साहब सादर स्वागत आइए। आबू राज पर राजकुमारों राज दरबार सजाइए। छत्तीसगढ़ के राज दुलारो विजय का तिलक लगाइए। बाबा राजी राजारों साकार स्वप्न बनाइए। रायपुर के संग राय साहब सादर स्वागत आइए। आबू राज पर राजकुमारो।
मधुर वाणी ग्रुप का तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद है। मैं दीदी जी से अनुरोध करूंगी यदि आप 5 मिनट समय दे सके तो सभी भाई बहनों को थोड़ा टोली वितरण करते।
आज शाम का थोड़ा बिजी भी था, फिर भी मैंने कहा मुझे जाना जरूर है क्योंकि रायपुर के साथ ड्रामानुसार हमारा बना हुआ प्रोग्राम लास्ट ईयर दिसंबर का नहीं हो सका। तो इसीलिए बहनों ने कहा जल्दी आ जाना। मैंने कहा नहीं, सबसे मिल के ही आऊंगी। इसीलिए टोली खिलाएंगे तो ऑटोमेटिकली दृष्टि सबसे मिल जाएगी, सबको मिल जाएगी।